नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच मिसाइल तथा ड्रोन के नए हमलों के कारण पश्चिमी एशिया में संघर्ष और तेज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जरूरत पड़ने पर ईरान में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और बहरीन तथा जॉर्डन के शाह के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। दुबई और अबूधाबी से भारत के लिए उड़ानें फिर से शुरू। संयुक्त अरब अमीरात में फंसे यात्रियों को राहत। इंडिगो आज सऊदी अरब के जेद्दाह से भारत के लिए 10 विशेष राहत उड़ानें संचालित करेगा। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से बर्मिंघम में शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। ईरान और इसराइल अमेरिका ने मिसाइल और ड्रोन से नए हमले शुरू किए हैं। ईरान समर्थित मिलिशिया ने संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन सहित खाड़ी देशों में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइल और अमेरिका ने ईरान के सैन्य और खुफिया सहित दर्जनों ठिकानों पर हमले किए हैं। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका उद्देश्य ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना, उसकी नौसेना को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। ट्रंप ने आवश्यकता पड़ने पर ईरान में अमरीकी सेना भेजने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि सेना की ओर से अभी सबसे बड़ा हमला होना बाकी है। एक रिपोर्ट।
श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान में अभियान 4 से 5 सप्ताह तक चल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे और भी लंबा किया जा सकता है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में अभी बड़ा हमला होना बाकी है। इस बीच कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु सेना ने ईरान के 2 सुखोई SU-24 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। सऊदी अरब ने कहा कि उसने अपने रास तानूरा तेल रिफाइनरी को निशाना बनाने वाले ड्रोन को रोका। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि वह ईरान के हमलों का मुकाबला करने के लिए अमरीका का सहयोग करने के लिए तैयार है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में जान माल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसराइल की वायुसेना ने कहा कि उसने अमरीका के साथ संयुक्त अभियान में ईरान के 24 प्रांतों पर 1200 से अधिक मिसाइलें गिराई हैं। एक रिपोर्ट।
ईरान ने बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित 9 देशों पर हमले किए हैं। इस्लामिक संगठन रेड क्रिसेंट के अनुसार अमेरिका इसराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के लगभग 555 लोग मारे गए हैं। वहीं अब तक का सबसे घातक हमला मीनाब के एक बालिका प्राथमिक विद्यालय पर हुआ है। इसमें लगभग 180 बच्चों की जान चली गई। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की पत्नी की भी हवाई हमले में लगी चोटों के कारण मौत हो गई है। ईरान के एक बैलिस्टिक मिसाइल हमले में के 9 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हुए हैं। वहीं कुवैत में हुए ईरानी हमलों में 4 अमरीकी सैनिक भी मारे गए और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 32 लोगों के घायल होने की सूचना दी है। लेबनान में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हिजबुल्ला के हमलों के बाद इसराइल की जवाबी कार्रवाई में कम से कम 52 लोग मारे गए और 154 घायल हो गए। सरकार ने हिजबुल्ला की सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमरीकी दूतावास पर 2 ड्रोन से हमला किया है। सऊदी अरब ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। इस हमले से सीमित आग लगने और मामूली नुकसान की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच सऊदी अरब के प्रधानमंत्री क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय से भी टेलीफोन पर बात की और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। श्री मोदी ने जॉर्डन में शांति, सुरक्षा और वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया है। दुबई और अबूधाबी से भारत के लिए उड़ानें कल रात से फिर शुरू हो गई हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण संयुक्त अरब अमीरात में फंसे हजारों भारतीयों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ानें कई दिनों के बाद बहाल हो गई हैं। दुबई मीडिया कार्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दुबई हवाई अड्डों ने कल शाम सीमित उड़ानें फिर से शुरू होने की पुष्टि की है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि फंसे हुए यात्रियों की वापसी के लिए इंडिगो एयरलाइन ने आज जेद्दा से भारत के लिए 10 विशेष राहत उड़ानें संचालित करने की योजना बनाई है। ये उड़ानें आवश्यक स्वीकृतियों और मौजूदा हवाई क्षेत्र की स्थितियों के अधीन संचालित की जाएंगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इंडिगो यात्रियों की सुविधा के लिए जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय कर रही है। अमरीका ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के मद्देनजर वाणिज्यिक मामलों, नागरिक सुरक्षा और राजनयिक सुरक्षा विशेषज्ञों का 24 घंटे सातों दिन चलने वाला अंतर एजेंसी कार्यबल सक्रिय कर दिया है। ये कार्यबल वाशिंगटन स्थित एक समर्पित संचालन केंद्र से कार्य कर रहा है, जहां एक संकट संचार टीम 110 से अधिक अंतर एजेंसी प्रतिभागियों और प्रभावित दूतावासों के साथ प्रतिदिन समन्वय कॉल कर रही है। इस बीच अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक वीडियो संदेश में अमरीकावासियों से मध्य पूर्व के प्रमुख हिस्सों को तुरंत छोड़ने का आग्रह किया है और क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण गंभीर सुरक्षा खतरों की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने ईरान युद्ध के वैश्विक आर्थिक दुष्परिणामों पर चिंता व्यक्त करते हुए खाड़ी क्षेत्र के नेताओं के साथ कूटनीति का एक दौर चलाया है। श्री गुतरश के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को लेकर चिंतित है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा की है कि फ्रांस अपने परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि करेगा और पहली बार अपने परमाणु हथियारों से लैस विमानों को सहयोगी देशों में अस्थायी रूप से तैनात करने की अनुमति देगा। श्री मैक्रों ने ये बात फ्रांस के अटलांटिक तट पर स्थित इले लोंगियू के सैन्य अड्डे पर कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि फ्रांस के परमाणु हथियार यूरोप की सुरक्षा में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूरोपीय नेता इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बढ़ते तनाव और रूस द्वारा यूक्रेन पर जारी व्यापक हमले को लेकर चिंतित हैं। दक्षिण सूडान के एक सुदूर इलाके में विद्रोहियों द्वारा एक गांव पर हमले में 169 लोग मारे गए। इस घटना से देश में गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने एक बयान में कहा कि हमले के बाद 1000 लोगों ने उसके बेस में शरण ली है। संयुक्त राष्ट्र मिशन के अधिकारी अनीता किकी गबेहो ने सभी संबंधित पक्षों से बिना किसी देरी के शत्रुता समाप्त करने और अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब कल से भारत की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर आएंगे। राष्ट्रपति स्टब नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। आज दुनिया में कई जगहों पर पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इस खगोलीय घटना के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से गुजरेगा और आकाश में दाएं से बाएं की ओर बढ़ेगा। भारत में ये दुर्लभ खगोलीय घटना दोपहर 3:20 पर शुरू होगी और शाम 6:47 पर समाप्त होगी। भारत आज बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। सभी 5 स्पर्धाओं में भारत के 12 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु खाड़ी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण दुबई में फंसी हुई है, इसलिए टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का सामना पहले दौर में विश्व के शीर्ष वरीयता प्राप्त और मौजूदा चैंपियन चीन के शी यूची के साथ होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच मिसाइल तथा ड्रोन के नए हमलों के कारण पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जरूरत पड़ने पर ईरान में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और बहरीन तथा जॉर्डन के शाह के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। दुबई और अबुधाबी से भारत के लिए उड़ानें फिर से शुरू। संयुक्त अरब अमीरात में फंसे यात्रियों को राहत। इंडिगो आज सऊदी अरब के जेद्दाह से भारत के लिए 10 विशेष राहत उड़ानें संचालित करेगा और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से बर्मिंघम में शुरू होगी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।